शांति, ओम शांति। आप सभी मीडिया क्षेत्र से संबंधित भाई और बहनें मीडिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं और ये प्रातःकालीन सत्र विशेष रूप से आपके जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य शिक्षा है सहज राज योग उससे संबंधित हैं। आप उनके बारे में सुनेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है स्वयं के आध्यात्मिक अस्तित्व की पहचान। जब हम योग शब्द कहते हैं तो ये स्वतः ही हमें आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है और योग भारतीय संस्कृति के लिए कोई नया शब्द नहीं है और आज वर्तमान में भी हम देखते हैं योग लोकप्रिय हो रहा है। 21 जून को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं और अब तो 21 दिसंबर को भी वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया गया है। तो हमारे यहाँ ऋषि मुनि योग का अभ्यास करते रहे और इस योग के लाभ भी इस जीवन में अनुभव करते थे। योग से मन की शांति का अनुभव करना, मन को ईश्वर में एकाग्र करना, इंद्रिय संयम करना, स्वस्थ रहना, दीर्घायु होना, अपने मनोबल में वृद्धि करना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, ये सब योग के लाभ वो अनुभव करते रहे। और आज जो वर्तमान समय है वो तनाव, भय और चिंता का युग है। भले ही विज्ञान से हमें बहुत सुख सुविधा के साधन मिले हैं लेकिन प्रतिस्पर्धा, तनाव, भय, चिंता के कारण हमारे मन की शांति समाप्त हो गई है। तो आज वर्तमान समय में भी हमें योग की उतनी ही आवश्यकता है और इसीलिए स्वास्थ्य के संदर्भ में ही आज योग लोकप्रिय है। लेकिन योग का अर्थ केवल योगासन प्राणायाम करना नहीं, योगासन प्राणायाम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मन का स्वस्थ होना भी आवश्यक है क्योंकि बीमारी का प्रारंभ पहले हमारे मन से होता है और इसीलिए आज मेडिकल साइंस में 70-80% बीमारियां जो हैं वो मनोकायिक रोग हैं, साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड है, जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। उसमें हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, एसिडिटी की और भी कई प्रकार की एलर्जीज या मांसपेशियों से संबंधित एक लंबी लिस्ट है जो आज लाइफस्टाइल डिजीजेस मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो राजयोग हमारे मन को स्वस्थ बनाता है। जैसे हम पतंजलि योग के लिए भी कहते हैं कि वो अष्टांग योग है, 8 अंग हैं उसके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो आसन प्राणायाम हम कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे सहज है लेकिन राजयोग जो है वो ध्यान, धारणा, समाधि के स्तर का योग है। और योग शब्द वास्तव में संस्कृत भाषा से आया है जो युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है संबंध या मिलन, कनेक्शन, जोड़। जैसे हम वियोग कहते हैं तो वियोग माना अलग हो जाना। सहयोग हम कहते हैं तो जब दो मिलकर काम करते हैं तो वो सहयोग है। अगर हम संयोग कहते हैं तो अचानक कुछ मिल जाता है तो उसे हम संयोग कहते हैं। तो यानी योग जो है वो मिलने के अर्थ में ही हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हम 3 स्तरों पर योग का अनुभव करते हैं। एक भौतिक योग है जब वस्तुओं को मिलाया जाता है, अगर हम दही में चीनी या दूध में चीनी मिलाएंगे तो वो मीठा हो जाएगा, तो वो भी एक प्रकार का योग है जब चीनी का गुण उनमें आ गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वो पानी बनता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। तो दो तत्वों के मिलने से वो यौगिक बना। ऐसे ही आयुर्वेद में भी अनेक दवाओं के मिश्रण को योग कहते हैं। तो ये भौतिक योग है। दूसरा स्तर है मानसिक स्तर, यानी जब हमारा मन कहीं जुड़ा हुआ है तो मन के तीन स्थान हैं, व्यक्ति, वस्तु और कर्म। या तो हमारा मन किसी व्यक्ति को याद कर रहा होता है, या किसी वस्तु के लिए हम इच्छा या प्रयास करते हैं, या फिर कर्म में हमारा मन लगा हुआ होता है। तो इन तीनों स्थानों में से कहीं ना कहीं हमारा मन होता ही है, इसीलिए इस स्तर पर हम सभी योगी हैं। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा मन कहीं लगा हुआ नहीं होता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर की बात करते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर जो राजयोग है, यानी मन जब व्यक्ति, वस्तु, कर्म से निकलकर परमात्मा में लग जाए, ईश्वर में लग जाए, तो हम उसे राजयोग कहते हैं। और यहाँ पर जो राज शब्द है वो श्रेष्ठता का प्रतीक है। जैसे राजा सर्वश्रेष्ठ होता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च के साथ हमारा संबंध। तो परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए उनके साथ हमारा संबंध ये राजयोग कहलाता है। और इसे हम सहज राजयोग कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई कठिन क्रियाएं नहीं करनी होती या कठिन मंत्रों का जाप नहीं करना होता। ये इतना सहज है कि इसका कोई भी अभ्यास कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक वृद्ध भी कर सकता है, एक अनपढ़ भी कर सकता है, एक विद्वान भी कर सकता है, और कोई धर्म, जाति, भाषा, देश, आयु का इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो राजयोग अर्थात जैसे कहा हमारा संबंध, तो ऐसे तो समाज में हम सब संबंधों में ही रहते हैं। और हम संबंधों में क्यों रहते हैं? क्योंकि संबंधों में हमें स्नेह मिलता है, सुख मिलता है, सहयोग मिलता है, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वो प्राप्तियां हमें होती हैं। लेकिन वो परिवर्तनशील हैं, क्योंकि व्यक्ति की मनस्थिति, परिस्थिति बदलती रहती है। तो वही व्यक्ति जो हमें सुख देता है, उसी से हमें दुख भी मिलता है। वही व्यक्ति जो हमें प्रेम करता है, वही कभी हमसे नफरत भी कर सकता है। ऐसे ही जो हमारा सम्मान करता है, उससे हमें कभी अपमान भी मिल सकता है। तो हम देखते हैं ये अपने जीवन में हमारे अनुभव हैं। लेकिन जब हम ईश्वर से संबंध की बात करते हैं, तो ईश्वर से हमारा संबंध सदा एक जैसा है, क्योंकि वो परिवर्तन नहीं होता है। वो सदा ही शांति का सागर है, वो सदा ही सुख का दाता है, वो सदा ही प्यार का सागर है। तो इसीलिए जब भी ईश्वर के संबंध में हम आते हैं, तो हमें ये शांति, प्यार और सुख का अनुभव परमात्मा के साथ होता है। और हम सब उसे याद करते ही हैं, भले ही हमारी अपनी अपनी विधियां हैं परमात्मा को याद करने की। लेकिन हमारी शिकायत होती है कि ईश्वर की याद में हमारा मन नहीं लगता है, मन भटक जाता है। किसी व्यक्ति को याद करने में हमें ये शिकायत नहीं होती कि हमारा मन भटक जाता है, लेकिन परमात्मा की याद में हमारा मन नहीं टिकता है। और उसका कारण है अज्ञान, कि हमें परमात्मा का सत्य परिचय, सत्य ज्ञान नहीं है। हम जो भी ईश्वर को याद करते हैं, वो परंपरा से जो चला आ रहा है, उस अनुसार हम उसे याद करते हैं या जो हमारे पूर्वज करते आए वही हम करते हैं। तो राजयोग में आप विस्तार से समझेंगे कि परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, और उससे पहले हम स्वयं को भी नहीं जानते। हमारा स्वयं का भी सत्य आध्यात्मिक परिचय क्या है, यानी ईश्वर को याद करने वाले मैं कौन हूं। सामान्यतः जब ये सवाल आता है परिचय का, तो हम क्या उत्तर देते हैं, बहन जी मेरा नाम ये है, हम ये व्यवसाय करते हैं, जो भी व्यवसाय में हम हैं या बिजनेस में हम हैं या फिर ये मेरा स्थान है जहां हम रहते हैं। लेकिन इस संसार में जब हमारा जन्म हुआ तभी हमारा नाम नहीं था, कुछ समय के बाद हमारा नाम रखा जाता है, लेकिन तो भी हम थे। जो व्यवसाय हम करते हैं कई वर्षों के बाद हम वो व्यवसाय करते हैं, लेकिन उसके पहले भी तो हम हैं। और हमारा जन्म स्थान अधिकतर बदल जाता है जहां जन्म होता है, तो फिर मैं कौन हूं। तो ये जो परिचय है हमारा, ये बाह्य जगत से संबंध रखता है, यानी ये हमारा पूर्ण परिचय नहीं है, क्योंकि हम केवल बाह्य जगत में नहीं जीते, हमारा अंतर जगत भी है। और जब हम अपने भीतर की ओर जाते हैं, अपने अंतर जगत की ओर जाते हैं, तो उसमें विचार, भावनाएं, स्मृतियां, वृत्तियां, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और एटीट्यूड्स, ये हमारा अंतर जगत है जिसे हम चेतना कहते हैं। कॉन्शियंस, आत्मा, रूह, प्राण, अलग अलग नाम हम उसको देते हैं। तो ये हमारा जो अंतर जगत है वो सूक्ष्म है, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही इस शरीर को जीवन देने वाली शक्ति है जिसे हम आत्मा या सोल या रूह कहते हैं। मानो एक सीरियस पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है हॉस्पिटल में, और डॉक्टर पूरा प्रयास करते हैं कि उसको जीवन दिया जाए या किसी भी तरह से उसकी जीवन रक्षा हो सके, लेकिन दुर्भाग्य से अगर वो उसे नहीं बचा पाते तो फिर संबंधियों को क्या कहते हैं, किसे ले जाओ, शरीर को ले जाओ या पेशेंट को ले जाओ, बॉडी को ले जाओ या पेशेंट को ले जाओ, बॉडी को ले जाओ। तो अब वो पेशेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, वो अब जड़ शरीर है सिर्फ। तो आत्मा जब तक उस शरीर में थी तब तक उसमें जीवन था, वो फीलिंग्स थी, वो इमोशंस थे उसके अंदर, और उसके बाद वो केवल बॉडी हो गया। तो हम कई बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो चला गया। तो कौन चला गया? शरीर तो यही है, कौन चला गया? तो आत्मा चली गई। और हम उनकी शांति के लिए मौन रखते हैं, तो किसकी शांति? शरीर तो शांति है ना, तो फिर किसकी शांति? आत्मा की शांति। तो हम मनुष्य आत्मा या ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ये दो शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, ह्यूमन प्लस बीइंग। तो ह्यूमन शब्द जो है वो ग्रीक के ह्यूमस से आया है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी। यानी हमारा ये जो शरीर है ये पंच तत्वों से यानी प्रकृति से बना हुआ है, और इसमें जब बीइंग माना आत्मा जो कॉन्शियस है वो जब प्रवेश करती है तब वो ह्यूमन बीइंग है। तो हम ह्यूमन बीइंग हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। यानी आत्मा शरीर के बिना बेकार है और शरीर आत्मा के बिना बेकार है। जैसे हम कहेंगे कि एक बहुत कुशल सर्जन है लेकिन उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो वो ऑपरेट नहीं कर सकता, उसको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। और अगर बहुत अच्छा ऑपरेशन थिएटर है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन सर्जन नहीं है तो भी वो बेकार है। तो कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दो के बिना उनका अस्तित्व बेकार है। ऐसे ही आत्मा और शरीर का सह अस्तित्व है, तब हमारा ये जीवन है। तो हम लेकिन अपने आप को ह्यूमन डूइंग ज्यादा समझते हैं, ह्यूमन बीइंग की बजाय ज्यादातर हम देह भान या देह अभिमान में रहते हैं। यानी हम जो करते हैं उसका एक भान हमें होता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, या पत्रकार हूँ, या जो भी, मैं एक व्यवसायी हूँ, प्रोफेसर हूँ। या हमें अपनी आयु की कॉन्शियसनेस भी हो सकती है कि मैं युवा हूँ या मैं वृद्ध हूँ। संबंधों की कॉन्शियसनेस में मैं फलाने का पति हूँ या पिता हूँ या पुत्र हूँ, या मैं फलाने की सास हूँ, पत्नी हूँ, ये कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। या फिर धर्म की, कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। या फिर नेशनैलिटी की, कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ या भारतीय हूँ। या जाति की कॉन्शियसनेस हो सकती है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ या मैं बनिया हूँ। या फिर भाषा की, कि मैं पंजाबी हूँ, मैं मराठी हूँ या गुजराती हूँ, जो भी। तो उसके कारण जो हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह का जो भान है, उसके आधार पर ही ये सारे भेदभाव हैं समाज के अंदर। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियसनेस लेवल पर आते हैं, तब हमारे इन भेदभावों से हम ऊपर उठ पाते हैं। हमारी जो समदृष्टि होती है वो उसके आधार पर, क्योंकि सब आत्माएं समान हैं। तो आत्मा और शरीर का जो संबंध है, शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। आत्मा सूक्ष्म है, जैसे कहा आपको, क्योंकि एक एनर्जी है, और विज्ञान कहता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, सिर्फ परिवर्तन होती है। हमारे यहाँ गीता में कहा गया, नैनम छिदन्ति शस्त्रानि नैनम दहति पावक, जिससे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जिसे वायु सुखा नहीं सकती, वो अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा है। तो आत्मा वो इटर्नल पावर है, और इसीलिए एनर्जी होने के कारण वो इनविजिबल भी है। इनडिस्ट्रक्टिबल तो है, लेकिन इनविजिबल भी है, कि हमें इन नेत्रों से आत्मा दिखाई नहीं देती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देखते, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं, ये माइक चल रहा है, ये कैमरा चल रहा है, लाइट चल रही है, एसी चल रहा है, जो भी यहाँ का कूलिंग है वो चल रहा है, तो ये सब कार्य हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी है, प्रूफ है उसका। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो ये सब स्टॉप हो जाता है। फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम ये माइक नहीं चला सकेंगे, ये लाइट नहीं चलेगी। ऐसे ही आत्मा, जो प्राण शक्ति है, वो जब तक इस शरीर में है, सभी अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। मस्तिष्क सोच रहा है, आंखें देख रही हैं, हार्ट पंप कर रहा है, फेफड़ों से हम सांस ले रहे हैं, और भी सभी अंग कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो फिर सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। मस्तिष्क से सोचना बंद, हार्ट से पंप करना बंद, फेफड़ों से सांस लेना बंद हो जाता है। तो आत्मा हमारी नेत्रों की क्षमता से परे है। उसका अस्तित्व तो है, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है कि नेत्र उसे देख नहीं सकते। ऐसे दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, उन्हें हम अनुभव से जानते हैं। आज हवा को हम अनुभव से जानते हैं, खुशबू को हम अनुभव से जानते हैं। कोविड आया, वायरस था, जो भी जीवाणु कीटाणु होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से नहीं देखे जाते, लेकिन बीमारी पैदा करते हैं तो डॉक्टर उससे पहचान लेते हैं कि हाँ ये बीमारी इस कीटाणु की वजह से हुई है ना। वो कोविड भी कितना सूक्ष्म लेकिन कितना जानलेवा वायरस रहा, जिनकी इम्यूनिटी कम थी, या जितने भी हमारे एटम्स हैं, अणु परमाणु जो भी हैं, इनविजिबल हैं। अगर हमें देखना भी है तो विशेष यंत्रों का हमें उसके लिए प्रयोग करना होता है। तो ऐसे ही आत्मा भी हमें इन नेत्रों से दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभव से हम आत्मा को जानते हैं कि आत्मा ही शरीर को जीवन देने वाली शक्ति है। हाँ, किसी किसी को दिव्य दृष्टि से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जैसे कहा, जो इनविजिबल चीजें हैं वो कोई विशेष यंत्रों का प्रयोग करके देखी जा सकती हैं, तो आत्मा को देखने की जो शक्ति है वो डिवाइन विजन से ही आत्मा देखी जा सकती है, अन्यथा आत्मा को हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते। और आत्मा की तीन शक्तियां हैं, तीन अंग हैं, मन बुद्धि संस्कार। जैसे शरीर अनेक अंगों से बना है, हम एक अंग को शरीर नहीं कहते, केवल मस्तिष्क को हम शरीर नहीं कहते, केवल हृदय को हम शरीर नहीं कहते, लेकिन ये सभी अंग मिलकर काम कर रहे हैं तब वो शरीर है। तो ऐसे ही आत्मा के ये तीन अंग मिलकर आत्मा है, मन बुद्धि और संस्कार। तो मन हमारी विचार शक्ति है, कल्पना शक्ति है, इच्छा शक्ति है, अनुभव करने की शक्ति है। और हम सब जानते हैं कि हमारे मन की शक्ति बहुत तीव्र गति वाली शक्ति है। एक सेकंड में मन कहां से कहां जाता है, मन की गति प्रकाश की गति से भी तेज है। हम सब शरीर से बैठे हो सकते हैं, यहाँ हम सभी शरीर से बैठे हैं, पर जरूरी नहीं है कि मन से भी बैठे हों। मन से हम कितनी बार हॉल से बाहर गए होंगे, क्योंकि ये मन की गति है। मन एक सेकंड में कहां से कहां चला जाता है, हमारे कंट्रोल में इतना मन नहीं होता है, जब तक कि उस विषय में हम पूरी तरह से एकाग्र हों। तो मन को समय स्थान व्यक्ति का कोई बंधन नहीं होता, किसी भी समय में मन चला जाता है। हम पास्ट में चले जाते हैं, अपने बचपन की बातों को हम सोच सकते हैं, हम भविष्य की कल्पनाएं कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं। स्थान का बंधन नहीं, कोई भी स्थान पर मन चला जाता है। अभी मैं कहूँ घर, तो कितनी देर में मन घर पहुंच जाएगा, कितना समय लगेगा, एक सेकंड में हम, ये हमारा मन एक चक्षु का काम करता है। जो चीजें हमें इन दो नेत्रों से नहीं दिखती वो हमें अपने अंतर चक्षु से दिखाई देती हैं। तो घर को हमने कौन से चक्षु से देख लिया, अपने मन रूपी चक्षु से हमने घर को देख लिया। और व्यक्ति का बंधन नहीं, कोई भी व्यक्ति को हम याद कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा, मन सबसे बड़ी ताकत है हमारी, लेकिन इसको हम सबसे कम समझ पाते हैं। यानी यदि व्यक्ति का मनोबल बहुत ऊंचा है तो वो असंभव को संभव करने की ताकत रखता है, या जो मिरेकल्स होते हैं वो मन की शक्ति से ही होते हैं। और मन के लिए हम कहते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम। हम वही हैं जो हमारे विचार हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो हमारा जीवन भी कैसा होगा, अच्छा ही होगा। अगर हमारे विचार साधारण हैं तो हमारे जीवन भी साधारण होगा। और अगर विचार बुरे हैं तो फिर उसका प्रभाव हमारे कर्मों पर आ सकता है। जरूरी नहीं है कि बुरे विचार आते हैं तो हम तुरंत उनको कर्म में ले आते हैं, क्योंकि बुद्धि और विवेक हमारा जो है वो हमेशा भविष्य परिणाम को सोच करके ही कोई विचार को कर्म में लाता है। तो इसीलिए कहते हैं जन्म से कोई संत भी नहीं होता है और जन्म से कोई चोर डाकू भी नहीं होता है। व्यक्ति के विचार जिस दिशा में चलते हैं वैसे ही उसका जीवन बनता जाता है। तो यदि हम सफल हैं तो पहले कहीं हमारे विचार सफलता के हैं, तब हम जीवन में सफल हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में देखा गया कि हम सारे दिन में 25,000 से 30,000 विचार करते हैं और एक मिनट में 25 से 30 विचार तक मन में आ जाते हैं, और ये चार श्रेणी में बांटे जा सकते हैं। पूरी दिनचर्या में हम ये चार प्रकार से सोचते रहते हैं। हमारे अधिकतर विचार आवश्यक विचार या नेसेसरी थॉट्स होते हैं जो हमारे कार्यों से संबंधित होते हैं, क्योंकि बिना सोचे हम कोई कर्म नहीं करते। कोई भी कर्म का बीज हमारा एक विचार होता है। तो हम जो भी करना चाहते हैं सारे दिन में, हम आज क्या करेंगे, उसका पहले मन में विचार आता है। इससे मिलना है, ये काम पूरा करना है, या जैसे आप यहाँ भी आए तो ज़रूर पहले हमने उसका प्लानिंग किया, तभी हम यहाँ शांतिवन में पहुँचे हैं। तो कोई भी कार्य हम करेंगे तो पहले हम सोचेंगे। तो 70% हमारी थॉट एनर्जी हमारे कार्यों के विचारों में जाती है। लेकिन हमेशा हम काम में व्यस्त हैं ऐसा नहीं, कभी हम फुर्सत में भी होते हैं, लेकिन मन फुर्सत में नहीं होता है। हम भले ही शरीर से आराम कर रहे हैं लेकिन मन अपना काम करता रहता है। तो उस समय हमारे मन में जो विचार चलते हैं ज्यादातर वो वेस्ट थॉट्स होते हैं, व्यर्थ विचार, यानी हम बीती हुई बातें सोचना शुरू कर देंगे, क्या क्या हुआ, क्योंकि जीवन में घटनाएं तो घटती रहती हैं, तो ये हुआ वो हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, ये सारी बातें। कई बार ऐसा होता है कि जो बात हुई होती है वो बहुत छोटी होती है लेकिन उसको हम इतना सोच लेते हैं वर्तमान में कि उसे हम राई को पहाड़ बना देते हैं, और उस सारी फीलिंग्स को हम प्रेजेंट में भी फील करते रहते हैं। तो कुछ लोगों को पास्ट को सोचने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, और कुछ लोग भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, या जैसा हम सोचते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा। तो ये सभी वेस्ट थॉट्स हैं, क्योंकि ये हमारे समय और शक्ति को व्यर्थ गंवाते हैं। अगर हम पास्ट को सोच रहे हैं तो हम कहते हैं ना, पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया वो लौट कर आने वाला नहीं है। हाँ, अगर उससे हमने कुछ सीखा है तो जरूर हम उसे यूज करें, उससे हमारा भविष्य अच्छा होगा। और भविष्य के लिए तो हम कहते हैं कि वो तो अभी आया ही नहीं, वो तो हमारे वर्तमान पर निर्भर। एक सेइंग है, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज गिफ्ट। उसको हम प्रेजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए गिफ्ट की तरह है। तो प्रेजेंट में रहना ये जीवन जीने की कला है, और नहीं तो हम अपने समय और शक्ति को व्यर्थ गंवाते हैं, इसलिए ये वेस्ट थॉट्स कहलाते हैं। और तीसरे प्रकार के जो हमारे विचार हैं वो हैं नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, कुविचार, ये भी मन में आ जाते हैं। हालांकि बहुत कम परसेंटेज में, सिर्फ 5% सारे दिन में हम नेगेटिव होते हैं। तो ये जो 5% विचार हैं, ये कौन से होते हैं बुरे विचार? स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, किसी के प्रति वैर भाव रखना, या निराशा, भय, चिंता, ये सब नेगेटिव स्टेट्स ऑफ माइंड है। और जब ये विचार मन में आते हैं तो हमारे मन की शक्ति कई गुना नष्ट होती है। यानी जब भी हम नेगेटिव थॉट्स में होते हैं हम अशांति का अनुभव करते हैं, हम तनाव का अनुभव करते हैं और दुख में चले जाते हैं। कहते हैं ये विष की तरह काम करते हैं, जैसे विष की अधिक मात्रा नहीं चाहिए, थोड़ी मात्रा में ही विष अपना काम कर देता है। तो सारे दिन की सुख शांति हम केवल कुछ नेगेटिव थॉट से खत्म कर लेते हैं। मानो गुस्सा आता है, गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन है। कितनी देर हम गुस्सा करते हैं? ज्यादातर 2-5 मिनट गुस्सा करते होंगे, लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तब हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए। वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और उसका असर हमारे संबंधों पर आ जाता है। इसलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। कहने वाला शायद भूल सकता है लेकिन सुनने वाला नहीं भूल पाता और उससे संबंधों में प्रेम खत्म। कई बार संबंध टूट भी जाते हैं और फिर हमारी खुद की क्षमता पर असर आता है कि गुस्सा करने के बाद हम मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे या हम जितनी क्षमता से अपना काम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे। तो कई घंटों तक उसका असर हमारे मन बुद्धि पर भी रहता है। तो थोड़े समय का गुस्सा कितना लंबा समय तक उसका प्रभाव चल सकता है, घंटों तक, दिनों तक, कई बार जीवन भर तक भी हम कह सकते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट्स हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बनते हैं। और चौथे प्रकार के जो विचार हैं वो हैं पॉजिटिव थॉट्स। ये भी हम करते हैं, अच्छे विचार भी करते हैं लेकिन कम। शुद्ध विचार, सकारात्मक विचार जो भी है हम करना भी चाहते हैं। ये कौन से विचार हैं? ये वैल्यू बेस्ड थॉट्स होते हैं, स्नेह, सहयोग, दया, करुणा, क्षमा की भावना, सेवा भावना, ये सब पॉजिटिविटी है हमारी। और जब भी हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो हमारा मन शांत होता है, प्रसन्न होता है और मन एकाग्र भी हो जाता है, मन की क्षमता भी बढ़ जाती है, यानी मनोबल में भी वृद्धि होती है और हमारी कार्य क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो हम चाहते तो हैं कि हम पॉजिटिव रहें लेकिन नहीं रह पाते क्योंकि बहुत सारे प्रभाव हमारे मन के ऊपर होते हैं, खासकर व्यक्तियों, परिस्थितियों के प्रभाव। और व्यक्तियों, परिस्थितियों के प्रभाव इस प्रकार के होते हैं कि जैसे वो हमें कंट्रोल करते रहते हैं। जिस भी प्रकार के व्यक्ति के हम संपर्क में आते हैं, उनका हमारे साथ कैसा संबंध है, उस अनुसार मेरे मन की स्थिति हो जाएगी। या कोई परिस्थिति कैसी आई जीवन में, कोई समस्या कैसी आई, उसके अनुसार मेरा मन दुखी या सुखी हो जाएगा। तो ज्यादातर हम उनके गुलाम होते हैं, यानी हम विक्टिम होते हैं, मास्टर नहीं होते हम। उनके अनुसार हमारा मन चल रहा होता है। जैसे हम कहते हैं जंगल उगाए नहीं जाते, जंगल अपने आप उग जाते हैं, लेकिन अगर हमें फूलों का बगीचा लगाना है तो मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के गार्डन नहीं होते। तो ऐसे ही हमारा मन किन्हीं भी विचारों में आसानी से चला जाता है, वेस्ट में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है या डिप्रेशन, डिप्रेसिव थॉट्स में चला जाएगा कोई भी। लेकिन अगर हमारा मन सुमन रहे, माना मन में श्रेष्ठ विचार, पॉजिटिव विचार सदा रहे, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, यानी मन को समय देना पड़ेगा। और ये समय हम मन को नहीं देते क्योंकि मन हमारा सूक्ष्म है, इसलिए मन की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। ध्यान हमारा शरीर की ओर जरूर जाता है ना, शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम कितना समय देते हैं, कैसा भोजन होना चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए या कितना आराम मेरे शरीर को चाहिए, वो सब समय हम देते हैं। लेकिन अपने मन को, मेरे मन को कौन सा भोजन मुझे देना है? मन का भी तो भोजन है, तो मन का भोजन क्या है? विचार हमारे मन का भोजन है, तो कौन से विचार, क्या इनपुट हम अपने मन को दे रहे हैं? हाँ, कई बार आज हम कहते हैं मीडिया का ही जमाना है, हर एक के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल है माना ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं लोग, उस पर बिताते हैं। और क्या इंफॉर्मेशन, क्या इनपुट लेते हैं अपने अंदर? हाँ, तो मतलब कहने में आता है कि इस दुनिया की जो बुरी बुरी खबरें होती हैं वो मीडिया की सबसे अच्छी खबरें होती हैं। हेडलाइंस में कौन सी खबरें होती हैं, कौन सी होती हैं, और फिर सब उसको बार 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 सामने लाते हैं। और जब बार बार सामने आते हैं तो उसका क्या असर होता है दिमाग पर, तो हम समझ सकते हैं कि उसका असर दिमाग पर कि वो मन को अशांत करने वाले, मन को टेंशन देने वाले हो सकते हैं। तो ज्यादातर आज लोगों की दिनचर्या की शुरुआत मीडिया से ही होती है, किसी ना किसी रूप में मीडिया, चाहे वो अखबार के रूप में है, चाहे वो मोबाइल के रूप में है, चाहे वो टेलीविजन के रूप में है। ऐसे नहीं है कि कोई अच्छे प्रोग्राम नहीं आते हैं मीडिया में, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होती हैं, लेकिन मन का झुकाव कहाँ होता है, जिसके लिए हमें कोई ज्यादा प्रयास ना करना पड़े। तो नेगेटिव की ओर मन सहज चला जाता है और व्यक्ति वो देख रहा होता है या वो सुन रहा होता है जो उसे नहीं देखना चाहिए और सुनना चाहिए, तो उसका इफेक्ट हमारे मन मस्तिष्क पर आता है वो इनपुट। तो सुबह की शुरुआत कभी भी हमारी नेगेटिव संसार समाचार से नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे मन के विचार, मन की शक्ति। और दूसरी हमारी जो आत्मा की शक्ति है वो है बुद्धि की शक्ति, जिसे हम सोचने, समझने, निर्णय करने, परखने की, विश्लेषण करने की शक्ति कहते हैं। और मन और बुद्धि का कार्य इस प्रकार से है कि जहां भी हम दुविधा में होते हैं, करूं नहीं करूं, ये ठीक है ये नहीं, उचित नहीं है या सही है गलत है, उसमें जो निर्णय लेना है तो पहले परखना और फिर निर्णय लेना, ये कार्य हमारा बुद्धि करती है। तो कोई भी काम जब हम पहली बार शुरू करते हैं जीवन में तो एक अंतर्द्वंद से मन गुजरता है और बुद्धि फिर उसको डिसाइड करती है कि क्या करना है, और फिर अनुसार हम कर्म करते हैं। मानो फॉर एन एग्जाम्पल, मानो पहली बार कोई व्यक्ति शराब पीता है, आप पार्टी में जाते हैं, वहां आपको ऑफर होती है, ज्यादातर ऐसे ही शुरुआत होती है, आपके दोस्त हैं, पार्टी है, माहौल है कुछ इस तरह का, और कहा कि ड्रिंक है लेना है, तो आप सोचते हैं चलो पार्टी में आए। अब दोनों अगर पहली बार ले रहे हैं, पहले कभी नहीं लिया है तो हिचक होगी ना, तुरंत नहीं ले लेंगे उसको, सोचेंगे कि लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि ये शराब पीना क्या है वो हमें सबको मालूम है। तो अगर बुद्धि और विवेक शक्तिशाली है, पता है कि ये गलत है, नहीं लेंगे तो अच्छा है, तो फिर कितना भी हम माहौल है, कितना भी पीयर प्रेशर है, व्यक्ति वो काम नहीं करेगा क्योंकि विवेक पावरफुल है। लेकिन अगर मन हावी हो जाता है तो फिर कितनी भी समझ है कि ये गलत है, व्यक्ति वो काम कर लेगा। तो आज दुनिया में जितने भी क्राइम होते हैं उसका कारण यही होता है, ऐसा नहीं उनको ये समझ नहीं है कि ये गलत है ना, कॉन्शियंस से व्यक्ति समझता है कि गलत क्या है और सही क्या है, लेकिन विवेक कमजोर पड़ जाता है और मन हावी हो जाता है तब व्यक्ति वो गलत काम कर लेता है। और एक बार जब वो गलत काम हो गया तो उसका परिणाम तो कर्म के बाद परिणाम तो है ही है, तो या तो वो हैबिट में आ जाता है, आदत बन जाती, बार बार जो हम कर्म करते हैं वही हमारे संस्कार बन जाते हैं या हमारी आदतें बन जाती हैं। तो ये हमारे जो संस्कार हैं उसके अनुसार ही आत्मा को टाइटल मिलता है, किसी को हम महात्मा कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं, देवात्मा कहते हैं, पापात्मा भी कहते हैं। तो आत्मा पर कहा, हमने उसको महान शरीर, पुण्य शरीर, धर्म शरीर नहीं कहा, तो क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है, तो कर्म करने वाली आत्मा है, इसीलिए वो टाइटल आत्मा पर होता है। और दो प्रकार के संस्कार आत्मा के अंदर हैं, एक है आत्मा के निजी संस्कार जिनसे आत्मा बनी है, जैसे हम कहते हैं ये शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, ये हमारे शरीर को बनाने वाले तत्व हैं। तो इस शरीर को सस्टेन करने के लिए भी हमें यही चाहिए। आज 70% हमारा शरीर जल है, तो हमें प्यास लगती है तो हम पानी ही पीते हैं। पानी की बजाय अगर कोई हमें ऑयल दे दे या पेट्रोल दे दे तो वो हमारे लिए पॉइजन हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे शरीर की बनावट नहीं है। मुझे वही चाहिए जिससे मेरा शरीर बना है। आज सांस लेने में हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, क्योंकि वही मेरे शरीर की बनावट है। अगर दूसरी कोई गैस हम सांस में ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, तो क्या होगा, कुछ ही मिनटों में दम घुट जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो मुझे क्या चाहिए, वही जो मेरा शरीर बना है। ऐसे ही आत्मा सत्वगुणी है, 7 गुणों से आत्मा बनी हुई है, ज्ञान प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता और शक्ति, ये हमारे निजी गुण हैं हर एक आत्मा के, ज्ञान प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता और शक्ति। तो हमें क्या चाहिए जीवन में, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, आनंद माना खुशी चाहिए। कोई कहेगा मुझे नहीं चाहिए, कोई ऐसा कहेगा कि मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे खुशी नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, कहेगा कोई नहीं कहेगा। फिर चाहे हम कोई भी धर्म के हैं, देश के हैं, भाषा के हैं, जाति के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा को क्या चाहिए, यही चाहिए। हम प्रेम का व्यवहार पसंद करते हैं, अगर कोई हमसे नफरत करे या हमारा अपमान करे, कोई मजबूरी है तो हम चिल्लाएंगे, और मजबूरी नहीं है तो दोबारा हम उस व्यक्ति से मिलना भी पसंद नहीं करेंगे। तो प्रेम आत्मा का स्वभाव है, तो प्रेम ही हमें पसंद आता है। ऐसे ही सुख, सुख में जीवन हमें सहज लगता है, और दुख के 4 दिन भी भारी लगते हैं। दुखी होते ही हम कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके मेरे जीवन से ये दुख दूर हो जाए, उसके लिए हम अनेक प्रयास करते हैं। और अगर दुख दूर नहीं होता तो फिर भगवान से क्या कहते हैं, हे भगवान ऐसे जीवन से तो अच्छा है। और कई लोग तो क्या करते हैं, खुद ही अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। आज कितने सुसाइड होते हैं दुनिया के अंदर। तो कोई सुखी व्यक्ति ऐसा सोचेगा भी नहीं, वो सोचेगा मेरी आयु जितनी लंबी हो उतना अच्छा है। तो सुख हमारा स्वभाव है, दुख में जीना आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे ही हमें शांति चाहिए, अशांति में हम असहज हो जाते हैं और शांति के लिए प्रयास करते हैं। शांति के लिए भी मनुष्य क्या क्या करते हैं, आज हम बाहर जाते हैं, समुद्र किनारे जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, या कोई आश्रम मंदिर में जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे कि हमें शांति मिले। कई बार यहाँ तक भी कहते हैं कि भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है जीवन में, शांति नहीं है। तो अल्टीमेट एम क्या है, शांति चाहिए ना? शक्ति मांगते हैं भगवान से, इतनी शक्ति हमें देना दाता, हम कभी भी कमजोरी नहीं मांगते। तो इसका मतलब मेरा स्वभाव क्या है, शक्तिशाली रहना, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे वो मानसिक बौद्धिक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से, हम शक्तिशाली रहना चाहते हैं। ऐसे ही प्यूरिटी हमारा स्वभाव है। प्यूरिटी माना ऑथेंटिसिटी हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो, चरित्रवान हो, ये आत्मा का स्वभाव है। इसके विपरीत लोग हमें ज्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो ये आत्मा के निजी गुण हैं जो हम सब के अंदर हैं, लेकिन क्योंकि बाह्य प्रभाव, बाह्य कर्मों के प्रभाव आत्मा पर पड़ते रहते हैं, इसीलिए हम कभी शांति का अनुभव करते हैं, कभी अशांत भी हो जाते हैं, कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी भी होते हैं, कभी हम खुशी का अनुभव करते हैं तो कभी हम उदास भी हो जाते हैं। तो जो बाह्य प्रभाव, कर्मों के प्रभाव हैं, वो चार पांच प्रकार से आत्मा के ऊपर आते हैं। एक तो है वातावरण का प्रभाव, परिवेश का प्रभाव, जिस वातावरण में हम रहते हैं वो एनवायरमेंट, या ये भी घर का वातावरण यानी जो परवरिश होती है बच्चों की, वो भी उसके संस्कारों पर प्रभाव डालती है। फिर संघ का असर होता है, कहते हैं जैसा संघ वैसा रंग लगता है, या इंग्लिश में कहते हैं ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मनुष्य की पहचान उसके संघ से होती है। एक अच्छा संघ बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित करता है, और एक अच्छा व्यक्ति अगर बुरे संघ में आ जाए तो वो कब बुराई की ओर चला जाता है उसको भी पता नहीं चलता। आज इतिहास में अनेक मिसाल है, हम सुनते हैं संत वाल्मीकि की कहानी, वो डाकू थे पहले लेकिन एक साधु के संपर्क में आते ही उनका जीवन बदल गया। ऐसे ही डाकू अंगुली माल हुए, डाकू अंगुली माल खूंखार डाकू थे लेकिन महात्मा बुद्ध के संपर्क में आते ही वो भिक्षु बन गए। तो थोड़े समय के वो सत्संग ने उनके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया। तो संघ का इतना प्रभाव मनुष्य के जीवन पर होता है, और कुछ संस्कार हमारे पूर्व जन्मों से भी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा तो सदा ही है, वो सिर्फ शरीर को एक वस्त्र की तरह धारण करती है, और ये शरीर रूपी वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो आत्मा इस पुराने वस्त्र का त्याग करके जन्म, नए जन्म के रूप में नया वस्त्र लेती है। तो संस्कार ले जाती है, बाकी कुछ नहीं ले जाती। जो भी भौतिक संपदा है, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, वो सब पीछे छूट जाते हैं। तो वो जो संस्कार है उनका प्रभाव दिखाई देता है। कई बार हम बच्चों को देखते हैं तो कुछ बच्चे बहुत छोटी आयु में ही विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में ऐसी कलाओं में वो पारंगत हो जाएंगे कि आश्चर्य होगा कि कौन ऐसा सीख सकता है। जैसे कुछ साल पहले एक छोटा बच्चा था, उसका नाम कोटिलिये था, हो सकता है आप में से भी किसी ने सुना हो, जिसको गूगल बॉय बोलते थे। वो 5 साल की उम्र में वो बच्चा कोई भी आंसर कर देता था, कोई भी सवाल पूछो इस दुनिया के संबंध का वो बच्चा आंसर करता था। वो इतना जीनियस वो था, उसके उसके कई इंटरव्यू भी हुए चैनल्स में। तो ऐसे हम कई बच्चों को देखते हैं आज, हैं कितने मिसाल हैं ऐसे। और ये भी देखते हैं परिवारों में 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, बाकी सब कुछ समान है, एक ही माँ बाप हैं, घर का वातावरण वही, भोजन वही करते हैं, एक ही स्कूल में भी पढ़ते हैं, वही टीचर हैं, लेकिन एक स्वभाव से बहुत शांत है, स्टूडियस है, ओबीडियंट है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा उसके बिल्कुल विपरीत होगा, कितना भी कोशिश कर लो उनको पढ़ने की इच्छा ही नहीं है। तो माँ बाप तो सभी के लिए शुभ भावना रखते हैं, हर एक बच्चे का भविष्य ऊंचा बनाना चाहते हैं, पर क्या सभी बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं होते। तो ये अंतर क्यों है? क्योंकि पूर्व जन्मों से वो जो अपने कर्म लेकर आए उस वही उनके प्रारब्ध को निर्धारित करते हैं। इस जन्म में हम कर्म करते हैं वो कर्म का फल है, लेकिन पूर्व जन्म से जो हम लाए वो भाग्य होता है, वो व्यक्ति का भाग्य कहलाता है। तो इसका प्रभाव भी हम व्यक्तियों के जीवन में देखते हैं अलग अलग तरह से। और कुछ प्रभाव आत्मा पर मनोबल का भी रहता है, जैसे कहा मनोबल वो ताकत है जिसके आगे बाकी सब बाह्य प्रभाव गौण हो जाते हैं। फिर चाहे कैसा भी परिवेश हो, कैसा भी संघ हो, क्या भी पूर्व जन्म से हम लेकर आए हैं, लेकिन अगर मनोबल ऊंचा है तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो इंसान अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है, सफल हो जाता है। और ऐसे भी मिसाल हैं, आज हम जितना भी देखते हैं, महात्मा गांधी हुए, विवेकानंद हुए, मदर टेरेसा हुई, या अब्राहम लिंकन थे, या वर्तमान में भी हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो कैसे बाल्यावस्था से आए, कैसे साधारण परिवार से वो निकले और आज अपने मनोबल के आधार पर हमारे भारत देश को वो कुशल नेतृत्व दे रहे हैं। तो ये मनोबल जब ऊंचा होता है तो फिर बाकी बाह्य प्रभाव नहीं के बराबर रह जाते हैं। आत्मा का स्थान शरीर में यहाँ मस्तिष्क के यहाँ दोनों भूहों के बीच में, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ आत्मा निवास करती है, एक ज्योति बिंदु चमकते हुए सितारे के समान। आत्मा है जो हमें दिखाई नहीं देती, सितारे की तरह है, लेकिन वो सितारा आसमान का दिखाई देता है, लेकिन ये शरीर का आत्मा रूपी सितारा हमें दिखाई नहीं देता है। और आत्मा जो है वो शरीर में एक ड्राइवर की तरह है, जैसे कार में ड्राइवर होता है और उसका स्थान निश्चित होता है, वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर के ही गाड़ी को ड्राइव कर सकता है। अगर वो किसी और सीट पर बैठकर ड्राइव करने की कोशिश करे तो ड्राइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ड्राइविंग के सारे साधन उस ड्राइविंग सीट पर हैं। ऐसे ही हमारे शरीर की ये ड्राइविंग सीट है, क्योंकि हम मस्तिष्क जो आत्मा के लिए कंट्रोल रूम है, वो मस्तिष्क यहाँ पर है और हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान मुख, ये सब हमारे मुख यहाँ पर ही हैं जो मेन परसेप्शन ऑर्गन है, और आत्मा इसके द्वारा ही पूरे शरीर को यहाँ से कंट्रोल करती है। और इसीलिए जो हमारे भाव प्रकट होते हैं, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार आत्मा में है, विचारों से हमारे भाव बनते हैं और वो सबसे पहले हमारे चेहरे पर आते हैं, क्योंकि चेहरा आत्मा के सबसे नजदीक है। और इसीलिए हम कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा हमारे मन का दर्पण है। तो जो भी हम सोच रहे हैं वो हमारे चेहरे पर आ जाता है। अगर हम खुश हैं तो भी चेहरे पर दिखाई देता है, अगर हम उदास हैं तो भी चेहरे पर दिखाई देता है, अगर हम चिंता में हैं तो भी दिखाई देता है। कोई भी देखकर आपको बता देता है ना, क्यों भाई क्यों उदास नजर आ रहे हो, क्यों खुश नजर आ रहे हो, तो पता चल जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो क्योंकि आत्मा प्रस्थान यहाँ है, आत्मा हृदय में निवास नहीं करती, क्योंकि कई बार ये भ्रम होता है कि आत्मा हृदय में रहती है, क्योंकि भावों को हम हृदय से जोड़ते हैं। तो आत्मा हृदय में नहीं है, हृदय तो सिर्फ पंप करने का ऑर्गन है, ब्लड पंप करता है, ब्लड को बनाता भी नहीं है हमारा हृदय। और आज तो हृदय की सर्जरी हो जाती है ना, बाईपास सर्जरी होती है या हृदय का ट्रांसप्लांट हो जाता है, एक व्यक्ति का हृदय दूसरे में भी लगा देते हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि हृदय बदलने से फिर वो आत्मा या उसका व्यक्तित्व बदल जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो भावों का प्रभाव हृदय पर पड़ता है, लेकिन हृदय में भाव नहीं है। इसलिए जब हम गहरे सोच में होते हैं तो हमारा हाथ यहाँ जाता है, हम कभी भी सीने पर हाथ नहीं रखते, क्योंकि हम वहां से नहीं सोच रहे। आत्मा का स्थान यहाँ है, मन यहाँ है, तो हम यहाँ से सोच रहे हैं। और मस्तिष्क का संबंध भी, क्योंकि आत्मा और मस्तिष्क का गहरा संबंध है, तो मस्तिष्क उसका माध्यम बनता है। और इसीलिए कर्म और भाग्य की बात भी जब हम करते हैं तो भी हमारा हाथ यहाँ जाता है, क्योंकि आत्मा यहाँ पर है। इसीलिए जब हम राजयोग का अभ्यास करेंगे तो हम आत्मचिंतन करते हुए अपने मन को यहाँ मस्तक के मध्य में एकाग्र करेंगे, जहाँ हम तिलक लगाते हैं या जो हमारी बहनें बिंदी लगाती हैं, ये स्थान आत्मा का निवास स्थान है हमारे शरीर के अंदर। और इस संसार में आत्मा कहाँ से आई है, कई बार ये प्रश्न भी उठता है मन में कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। जैसे कहा अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये जग एक मुसाफिर खाना है। तो फिर अगर जग मुसाफिर खाना है तो आत्मा कहाँ से आती है? तो आत्मा भौतिक नहीं है, इसलिए वो इस भौतिक जगत की रहने वाली नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में तीन लोग दिखाए हैं, तो एक जो भौतिक जगत है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें ग्रह उपग्रह सूर्य चांद तारे हैं, ये जो हमारी दुनिया है, इसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है और इस पृथ्वी पर ही जीवन है। यानी ये जो भी कर्म क्षेत्र है वो इस पृथ्वी पर है, और इसीलिए शेक्सपियर ने कहा कि दिस वर्ल्ड इज ए बिग ड्रामा एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग अवर रोल ओवर हियर। तो एक अनलिमिटेड स्टेज की तरह है ये पृथ्वी, जहां पर हम सभी ये शरीर रूपी ड्रेस पहनकर आत्माएं अपना अपना रोल हम यहाँ प्ले कर रहे हैं। और जैसे कि स्टेज कभी भी एक्टर का घर नहीं होता, लेकिन जब उसका रोल पूरा हो जाता है तो फिर वो अपना ड्रेस उतारकर अपने घर जाता है, ऐसे ही आत्मा भी अपनी शरीर रूपी ड्रेस को उतारकर अपने घर जाती है। तो आत्मा का जो घर है वो सूर्य चांद तारों से भी पार जो लोक हैं, वो ब्रह्म लोक, वो आत्मा का असली घर निवास स्थान है। इसे ब्रह्म लोक कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्म मह तत्व से बना हुआ है, ये छठा तत्व है। पांच तत्व इस प्रकृति के हैं और ये छठा तत्व है, ब्रह्म मह तत्व जो स्वप्रकाशित तत्व है, और ये सुनहरी लाल प्रकाश वाला तत्व है। लगभग कोशिश की है लेकिन वैसा रंग तो यहाँ नहीं बनाया जा सकता, तो इस प्रकार का कुछ प्रकाश उस ब्रह्मलोक का है जहाँ आत्मा निवास करती है। और आत्मा वहाँ अपने मूल स्वरूप में, आत्मा का मूल स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसी रूप में आत्मा अपने परम धाम अपने ब्रह्मलोक घर में निवास करती है। इसको अनेक नाम दिए हैं, ये मूल वतन है क्योंकि आत्मा का मूल निवास स्थान है, ये शांति धाम है क्योंकि यहाँ संपूर्ण शांति है, क्योंकि यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त है इसीलिए कर्म भी नहीं है, तो शांति है। और ये परलोक है क्योंकि संसार से परे का स्थान है, ये मुक्ति धाम है क्योंकि यहाँ आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त है, ये निर्वाण धाम है क्योंकि ये वाणी से परे है। तो इसको अलग अलग नाम दिए गए। परम धाम है क्योंकि परमात्मा का भी निवास स्थान है, परमात्मा भी परम धाम निवासी हैं, परमात्मा आत्मा के पिता हैं। तो बच्चे और पिता का घर एक ही होता है, तो परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं। तो इस तरह से सभी आत्माएं परम धाम में निवास करती हैं, और जब उनका इस सृष्टि पर रोल है तब आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर उतरती है, अपना ये शरीर रूपी ड्रेस जो उसको मिलता है उसे वो धारण करती है और अपना रोल यहाँ प्ले करती है। तो ये तीन लोक में, एक तो वो जो स्थूल जगत है जो जहाँ तक हमारे विज्ञान की पहुँच है, वो भी कुछ ग्रहों तक है, उससे आगे नहीं, उसके ऊपर जो लोक है वो सूक्ष्म लोक कहलाता है, क्योंकि आत्मा मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में आती है, इसलिए वो परम धाम में सीधा नहीं जाती, कुछ समय अपने अगले जन्म के लिए वो इंतजार करती है। तो वो सूक्ष्म शरीर में रहती है जो कि हड्डी मांस का शरीर नहीं है, वो लाइट का शरीर होता है जिसे सटल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, और वो भी हमें नेत्रों से दिखाई नहीं देती। तो कुछ समय तक, चाहे वो दिन हो या जो भी महीने साल हो, वो सूक्ष्म शरीर में आत्मा रहती है और फिर उसके बाद वो पुनर्जन्म लेती है। तो वो सूक्ष्म लोक वो सूक्ष्म शरीर का लोक है, और परम धाम आत्माओं का लोक है, जिसे हम कहानी के नाम से जानते हैं, शांति धाम, परम धाम, ब्रह्म लोक, ये सब ये आत्माओं का मूल निवास स्थान है जहाँ से आत्मा सृष्टि पर आती है। आज वर्तमान में विज्ञान का युग है और हम सब विज्ञान के युग में प्रमाण की बात करते हैं, तो आत्मा से संबंधित भी कुछ प्रमाण मिलते हैं जिनसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ आत्मा का अस्तित्व है, जैसे पूर्व जन्म की स्मृतियां किन्हीं बच्चों को आती हैं। बहुत अनकॉमन है, माना रेयर है, लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस भी आते हैं और पैरासाइकोलॉजी एक ब्रांच है जो उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो ये देखा गया कि जब उनके पूर्व जन्म के अनुसार वो जो बताते हैं कि वो किस गांव के हैं, कौन उनका परिवार है, या जो भी कारण से उन्हें पूर्व जन्म याद आता है, काफी हद तक वो सही होते हैं। 100% नहीं तो काफी हद तक वो सही होते हैं। तो फिर अगर पूर्व जन्म याद आया तो क्यों याद आया? क्योंकि अगर केवल यही जन्म यही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है, तो फिर शरीर तो समाप्त हो गया, चाहे उसे जला दिया गया या दफना दिया गया। अब जो नया शरीर है उसके अंदर तो नया ब्रेन है, उस नए ब्रेन में पुराने जन्म की स्मृति कहाँ से आ गई? तो अगर पुराने जन्म की स्मृति आती है तो इसका मतलब दोनों शरीरों में कुछ कॉमन है, तो वो आत्मा जो पूर्व जन्म में थी वो अब इस नए शरीर में नए मस्तिष्क का प्रयोग करके अपने पूर्व जन्म के बारे में बता पा रही है, तो वो सिद्ध करता है। और हम पूर्व जन्म भूल जाते हैं, ये हमारे लिए वरदान है, क्योंकि अगर हम अनेक जन्मों को याद रखेंगे तो कितनी स्मृतियों का बोझ हमारा मस्तिष्क ले सकता है। इस जन्म की भी बातें हमें याद नहीं रहती, 10 दिन पहले हमने क्या खाया था हम में से कोई भी नहीं बता सकता। तो ये हमारे को हल्का रखता है कि हम बीती हुई बातें ज्यादातर भूलते जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को याद आता है पूर्व जन्म तो वो उसके जीवन में समस्या ही पैदा करता है, वो कॉम्प्लिकेशंस ही पैदा करता है। तो ये हमारे लिए ईश्वर से वरदान है कि हम अपने पूर्व जन्म को पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन अगर याद आता है तो वो आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, वो तब होते हैं जब कोई व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बीच में होता है और जस्ट मृत्यु को टच करके वापस जीवन में आ जाता है, तो उस समय उनको जो अनुभव होते हैं वो आत्मा के अनुभव होते हैं और वो उसे भूल नहीं पाते, और उसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हम जानते हैं, क्योंकि हमारा मेडिकल बैकग्राउंड रहा है तो हम खुद ही इतने ऐसे अनेक मरीजों के संपर्क में आए, लेकिन अभी समय नहीं है क्योंकि आज गवर्नर जी आने वाले हैं और हमें कहा गया है कि इसे समय पर वाइंड अप करना है, तो बहुत विस्तार से हम इसको नहीं समझा पाएंगे उदाहरण देकर, लेकिन ऐसे केसेस होते हैं। तो वो आत्मा का खुद अनुभव करते हैं कि ये शरीर अलग है और मैं शरीर से अलग आत्मा रूप में मैंने अपने आप को देखा और शरीर को अलग देखा। और ऐसे ही हिप्नोटिक रिग्रेशन एंड प्रोग्रेशन, ये भी एक विधा है जो खास साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं। विदेशों में तो ये बहुत प्रचलित है और कई बीमारियों के इलाज के लिए, खासकर जो मानसिक बीमारियां होती हैं उसके इलाज के लिए डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं कि उनको पूर्व स्मृतियों में ले जाते हैं, वर्तमान समय के कई जो उनके प्रॉब्लम्स हैं या रोग हैं उनका कारण इस समय में समझ नहीं आता, उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, तो फिर जब वो रिग्रेशन में ले जाते हैं यानी पूर्व जन्म की स्मृतियों में ले जाते हैं, तब पता चलता है कि ये समस्या का कारण उनके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। तो इसके भी कई उदाहरण हैं जो अभी हम विस्तार में नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये देखा गया कि वो पूर्व जन्म में जब चले जाते हैं रिग्रेशन में तो भाषा ये बदल जाती है कईयों की। इस जन्म में मानो वो हिंदी बोलते हैं और पूर्व जन्म में वो कहीं इंग्लिश देश में थे तो वो इंग्लिश बोलने लगते हैं या स्पैनिश बोलने लगते हैं, जो इस जन्म में उनको इंग्लिश की या स्पैनिश की ABCD भी नहीं आती है, तो फिर कैसे ये संभव हो सकता है? तो वही आत्मा है इस शरीर में जो पूर्व जन्म में दूसरे शरीर में थी और उसको वो रिकॉर्डिंग भरी हुई है, और जब उसको रिवाइंड किया तो वही चीज जो है वो अब इस मस्तिष्क के द्वारा बोल रही है। तो ये आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। तो सार रूप में हमने समझा, हमारा स्वयं का आध्यात्मिक अस्तित्व, शरीर का अस्तित्व तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व, हमारी जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, वो है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा ने ये शरीर धारण किया है संसार में कर्म करने के लिए। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं या जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है, वो हमारा इस संसार में रोल है। और हमारा स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ज्योति बिंदु, एक चमकते हुए सितारे के समान, जो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के निजी गुण 7 गुण हैं, आत्मा सतोगुणी है, वो है ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और शक्ति। और शरीर में जो अस्थाई स्थान है आत्मा का, वो मस्तक के मध्य में, भ्रकुटि में है। और परमानेंट आत्मा का घर जो है वो परम धाम है, ब्रह्मलोक है, जो इस भौतिक जगत से पार है। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम जो भी कर्म करने के लिए आए हैं, वो हम श्रेष्ठ कर्म करके यहाँ से जाएं, ये हमारा लक्ष्य और कर्तव्य है। तो अभी हम कुछ मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे, जो राजयोग अभ्यास का पहला चरण है। तो जैसे जैसे मैं विचार आपको दूंगी, आप उन विचारों को फॉलो करेंगे, उनका अनुभव करने की कोशिश करेंगे, मन ही मन आप दोहराएंगे, मुख से नहीं बोलेंगे, मन ही मन उसका चिंतन करते हुए उन्हें अनुभव करेंगे। आंखें आप स्वाभाविक रूप से खुली रख सकते हैं या चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, और आप सीधे होकर बैठें, रिलैक्स होकर के बैठेंगे। अपने मन को आसपास के वातावरण से व्यक्तियों से आवाजों से न्यारा करते हुए मन को मस्तक के मध्य में एकाग्र करें। अपने मन रूपी अंतरचक्षु से स्वयं को देखें। मैं एक चेतनीय शक्ति आत्मा हूं, एक चमकते हुए सितारे के समान ज्योति पुंज हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने कर्म करने के लिए मैंने इन कर्मेंद्रियों का आधार लिया है। मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार वाली हूं। मन मेरी विचार शक्ति है, बुद्धि से मैं निर्णय लेती हूं, और अपने संस्कारों के अनुसार मैं अपने कर्म करती हूँ। अपने निजी स्वभाव में मैं आत्मा, शांत स्वरूप हूँ, इसलिए शांति मुझे पसंद है। शांति में ही सुख समाया है। शांति शांति ही मेरे मन की शक्ति है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, सत्चित आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से पार परम धाम है, ब्रह्मलोक है। जहां सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश है, यहां संपूर्ण शांति है। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में यहां निवास करती हूं। ये मुक्ति धाम है, निर्वाण धाम है। मेरे पिता परमात्मा का भी निवास स्थान है। ये मेरा असली घर है, जहां से मैं इस सृष्टि पर आई हूं। अब मैं पुनः स्वयं को इस साकार लोक में अपने शरीर में अनुभव कर रही हूं। मैं शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। आज पूरा दिन मैं ये अभ्यास करती रहूंगी कि मैं आत्मा हूं जो इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही है। ओम शांति शांति।